गुणों के गान में विवर्धमान महान दिन बितरे हमारे। इस समर अधिकार समयसार परमागम का समापन की ओर है। इस समापन के कलश है। अपन ने अभी पढ़ा तो अंतिम पंक्ति क्या थी, ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाते। जब तक ये ज्ञान माने ज्ञान पर जाए, ज्ञान में माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में स्थिर न हो जाए, तब तक इन भेद विज्ञान की भावना को भाना। देखो तो ज्ञान शब्द के वह तो अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन तीन प्रमुख रूप से हैं। ज्ञान नाम का गुण, और जिस द्रव्य में ज्ञान है उस आत्मा को भी ज्ञान शब्द से कहते हैं, और उस ज्ञान गुण के परिणमन को भी ज्ञान कहते हैं। तीन अर्थ तो होते ही हैं। तो पहला ज्ञान है वो पर्याय, और दूसरा ज्ञान है वो द्रव्य। जो ज्ञान नाम का गुण तो है ही नहीं। ज्ञान ज्ञान में फिर हो जावे, ज्ञान माने ज्ञान पर्याय, और ज्ञान माने भगवान आत्मा में स्थिर हो जाए। तो कहते हैं हमारा अंतिम उद्देश्य ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जावे है, और वो है मुक्त दशा। मोक्ष मोक्ष में ही ज्ञान ज्ञान में स्थिर है, ऐसा मानते हैं। शुरू कहां से हुआ, कि चौथे गुण स्थान से, और इसमें लिखा पढ़ा था ना अपने कल बनारसी दास का, कि भेद ज्ञान कबलो भलो जबलो मुकति न हो। अब ये तो अंत की बात हो गई। अब कहते हैं शुरू कहां से हुआ, तो कह दिया चौथे गुण स्थान से, लेकिन वास्तव में पहले से शुरू होता है। अलग बात है, क्योंकि पहले गुरु के उपदेश से और शास्त्र पढ़कर ये भगवान आत्मा परब्रह्मों से भिन्न है ये बात समझनी के नहीं समझनी। माने अनुभव तो कर्ण लब्धि के बाद होगा, और ये देशना लब्धि में है, तो यहां से ही शुरू हो गई ना प्रक्रिया। समझने की बात तो यहां से ही शुरू हो गई। वो कहते हैं भाई उसका नाम तो तब पड़ेगा, कब, जब वो चौथे गुण स्थान से भेद विज्ञान, लेकिन वो बात पहले से शुरू हो गई। देखो अपने यहां कहते हैं ना कि किसी लड़का लड़की की वे पति पत्नी कब कहलाते हैं, कि जब सात फेरे पड़ जाए तब, है ना। अब वो सात या चार का झगड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, तुम्हारे यहां चार पढ़ते हैं क्या, चार से हमारे यहां कहते सातवां फेरा जब तक नहीं पड़ा तब तक वो पति पत्नी नहीं है, और छह फेरे पड़ने के बाद लड़का लड़की को खड़ा कर देता है पंडित, और फिर कहता है भैया देखो अभी तक बेटी बाप की है, और सातवां फेरा पड़ा तो फिर वो पति की पत्नी हो जाएगी। तो वो कहता है अभी तक सोच लो जे तुम करने जा रहे हो ना, अभी तक चांस है पलटने का, तो सातवां फेरा पड़ा फिर बात पक्की हो जाएगी। देखो यहां तक है कि छह फेरे पड़े हों, लड़के को हार्ट अटैक हो जाए और लड़का वहीं खत्म हो जाए, तो वो लड़की विधवा होगी क्या, नहीं नहीं होती। और सातवां फेरा पड़ जाए और तब मरे तो हो जाएगी। समझ, इतना पक्का है नियम। तो सम्य दर्शन का ऐसा ही है कि कर्ण लब्धि में है तब तक वो सम्य दृष्टि नहीं है, और कर्ण लब्धि के अंतिम समय पार किया और सम्य दृष्टि हो जाएगा। तो अब वो कहते हैं कि कर्ण लब्धि वाला जो कार्य है बिना भेद विज्ञान के होगा। अब वो भले ही सातवें फेरे पर होगी, लेकिन वो लड़की उस लड़के को पति रूप में मान रही कि नहीं मान रही, वो लड़का उसे पत्नी रूप में मान रहा कि नहीं पहले। अब असली कहां से शुरू हुआ, कि जब एक दूसरे को उन्हें देखा और देखकर ये प्रक्रिया शुरू हुई कभी शादी करना क्या नहीं करना, तो जो मंथन चला वो सब उसी प्रक्रिया का अंग तो है। क्यों? तो जब तक ये भगवान आत्मा जुदा है और सारा शरीर आदि बाह्य परिग्रह ये जुदे हैं, ये जब बात पहले से चल रही ना तो वो तब से शुरू हुई वास्तव में, तो लेकिन तब तक सातवां फेरा नहीं पड़ जाएगा तो हम शादी नहीं मानेंगे, पति पत्नी नहीं मानेंगे। ख्याल में आई ना? अभी जरा हम थोड़ा बारीकी से इस पर विचार करते हैं कि वो भी मान लो कि सगाई हो गई और शादी में अभी 4 महीने की 6 महीने की देरी है, ये सब होता है ना। तो उस बीच में लड़का आकर कहे अब लड़की की माँ से कि मम्मी जी मैं हम दोनों थोड़ा आपको तो घूम फिर आए सिनेमा देख आए, क्यों होता होगा ना ऐसा? आजकल ज्यादा होता, पहले जमाने में तो जा ही नहीं सकते थे साथ में। हाँ बेटा जाओ, लेकिन उससे कहते हैं कि अपने छोटे भाई को साथ में ले जाना, लड़की से कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? मैं पूछता हूं जब सगाई पक्की कर ही गई है, अब वो उसकी हो ही गई है, तो फिर ये प्रतिबंध क्यों है? माने अभी कुछ ऐसा है जो नहीं हुआ है और कुछ हो गया है, ये बात भी पक्की है। अन्यथा तो वो किसी दूसरा लड़का, कोई भी लड़का आएगा और कहे तुम्हारी लड़की को हम सिनेमा दिखाने ले जाते हैं तो मां मंजूरी देगी? नहीं देगी। ख्याल में आई ना? तो कुछ हो भी गया है और कुछ नहीं भी हुआ है, है और ना के बीच में जो कुछ होए सो होए, है ना। अब जरा और आगे बढ़ते हैं, पहले के जमाने में तो था नहीं, लेकिन आजकल तो हो गया है ना। अभी सगाई भी पक्की नहीं हुई है और बात भी नक्की नहीं हुई है कि सगाई पक्की करना, सगाई की डेट फिक्स हो जाती है ना, जो 4 दिन बाद की भाई तो 4 दिन के बीच का पीरियड है, सगाई तो पक्की नहीं हुई है लेकिन नक्की हो गया है, तो घूम फिर सकते ना थोड़े थोड़े, क्यों सगाई के पहले भी। अभी नक्की भी नहीं हुआ है, नक्की करना है इसलिए देखना है। मुझे क्या बोलते डेटिंग, डेटिंग बोलते क्या बोलते आप लोग? तो उस डेटिंग के लिए भी आजकल तो भेजते तो हैं कि नहीं है, उन्हें आपस में बातचीत करने देते हैं कि नहीं करने देते हैं? क्योंकि नहीं करने देंगे तो वो सगाई शादी हो भी ही नहीं, उसका बीज तो उसमें पड़ना है। जब वो मिलेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, तब जाकर के मेरे कहने का मतलब वो बाद में नक्की करेंगे। तो वास्तव में प्रक्रिया कहां से शुरू हुई? डेटिंग जिस दिन शुरू हुई उस दिन से, और भी पीछे जा सकते हो, किससे डेटिंग करनी नहीं करनी क्या करनी, उसके पहले से ही ताज से थोड़ी डेटिंग शुरू हो जाती है। 50% पसंद होता है, क्यों? प्रथम दृष्टया बोलते ना, पहली नजर में देखने से, उसी से तो डेटिंग मेटिंग शुरू होती है ना। तो ऐसे ही इस भेद विज्ञान की डेटिंग भी ऐसी ही है। तो अपन कहें तो वहां से भेद विज्ञान शुरू होता है, बोलो। अब गुणस्थान बोलते तो पहले ही गुणस्थान में होगा ना, लेकिन उनने कि हम उसे नाम तब देंगे जब अनुभव हो जाएगा, साथ फेरे पड़ जाएंगे फिर बस। तब वो कहे नहीं बेटा मम्मी ये सगाई हो गई, पक्की हो गई और सब रिंग सेरेमनी हो गई, पंचों के सामने पक्की हो गई, तो अब ये लंगेठा क्यों लगाते हमारे शादी के छोकरे को? कि नहीं बेटा अभी कुछ बाकी है, तो जिंदगी भर तुम्हारे ही साथ कर देंगे, फिर चाहे जितना घूमना तो हमसे पूछने की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो बात वहां से शुरू होगी, विज्ञान चौथे अनुसार से शुरू हुआ, और कब तक? जब तक सिद्ध ना हो जाए तब तक। पर उसके पहले का जो इतना हिस्सा जो बताया, इसको पंडित टोडामल जी ने सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि ऐसा नाम दिया। तो वहां भी भेद विज्ञान होना कि नहीं होना? तो देखो अपन ने यहीं से बात शुरू करते हैं। आपके पास जिनके पास एक किताब है वो देखो, पेज नंबर 130 नीचे से 4 पंक्तियां, सबसे पहले देशना के माध्यम से यह प्रक्रिया आरंभ होती है, देशना से शुरू होता है काम, है ना। वो तो योग्यता है, कौन सर्वोत्तम लब्धि और विशुद्धि लब्धि, है ना। माने लड़का लड़की का देखना शुरू हुआ, वो वहां से बात शुरू होगी। अब वो लड़की है, पढ़ी लिखी हो, गोरी भूरी हो, 22 वर्ष की हो, लड़का हो 25 वर्ष का हो, पढ़ा लिखा, ये योग्यताएं हैं, ये इनके बिना भी वो शुरू तो नहीं होती बात। देखा नहीं है बिल्कुल अभी, फिर भी एक दूसरे की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उम्र है, कैसा रंग रूप है, कौन सी कुल है, कौन सी जाति है, ये सब बात भी पहले से पता होती कि नहीं होती। तो वास्तव में तो बात वहां अभी देखा ही नहीं, फर्स्ट प्रथम दृष्टया भी बात नहीं है, और उसके पहले से भी वो प्रक्रिया शुरू होती है। ऐसी भेद विज्ञान की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है, देशना लब्धि से। तात्पर्य यह है कि सबसे पहले, अब देखो मोक्ष तक पहुंचाएंगे, पूरा मोक्ष मार्ग आ रहा है इसमें, और इसमें क्या क्या अनिवार्य है वो बताऊंगा मैं आज, क्या अनिवार्य नहीं है उसकी बात नहीं करूंगा। आप निकालना अपने मन से, जिसको तुमने धर्म मान लिया है और मोक्ष मार्ग मान लिया है, यदि उसका नाम इसमें नहीं आता है तो सोचना उस पर एक बार कर क्या। सबसे पहले, अब आ गया सबसे पहले, शास्त्रों को पढ़कर, गुरु के वचनों को सुनकर, अपने ज्ञान में स्व और पर के बीच विभाजन रेखा खींची जाती है ना। सबसे पहले मैं समझौता होना है, तो क्या होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान में कि भैया पहले विभाजन रेखा खींचो कि कहां से हिंदुस्तान कहां से पाकिस्तान, उसके बिना तो कोई काम होगा ही नहीं ना। तो हमें ये करना है कि मैं कौन हूं और पर क्या है, इसके बीच में विभाजन रेखा खींचनी है। अब विभाजन यहीं से भेद विज्ञान की प्रक्रिया आरंभ होती है ना। बोलो, सिद्ध भगवान को अपने में रखना कि दूसरों में, अरे तो अपने भगवान है कि नहीं, नहीं पर में, अरहंत को भी पर में, आचार्य उपाध्याय सर्व साधु को, माँ बाप को, बाल बच्चों को, पत्नी को, शरीर को, सब कहां से शुरू होती समझ में आए ना। पर यह भेद विज्ञान वास्तविक भेद विज्ञान नहीं है, क्रिया इसके बिना काम होगा नहीं, और भेद विज्ञान अभी नाम दिया नहीं उसे, है ना। यह तो भेद विज्ञान की भूमिका मात्र है। असली भेद विज्ञान का आरंभ तो तब से होता है जबकि हम पर पदार्थों और पर भावों से भिन्न निज भगवान आत्मा की अनुभूति कर लेते हैं। अब तो सरल है ना, मोटानी जी बोलो, कितना क्लियर है, सरल है, अभी कोई कठिन नहीं है, उदाहरण से भी बात कर रहे हैं। लेकिन नए नए लोग होता है मोटा, नए नए लोग होता है तो आए, तुम्हें समझ में आएगी ये बात, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सब डेटिंग तो कर चुके हैं ना, जैसा उस वहां से गुजरे हैं बस वही प्रक्रिया यहां है। ख्याल में हो जाए, जबकि हम पर पदार्थों और पर भावों से भिन्न निज भगवान आत्मा की अनुभूति कर लेते हैं, तब से प्रत्यक्ष वेदन कर लेते हैं, यद्यपि यह आत्मानुभूति ही वास्तविक भेद विज्ञान है, तथापि इसके लिए किए गए पुरुषार्थ को भी भेद विज्ञान कहा जाता है। अपना जो पहले पुरुषार्थ से शुरू हुआ और मोक्ष तक यही पहुंचा देगा आपको, अब की दूसरी क्या जरूरत है, काय को यहां वहां माथा मारते हो क्यों। आत्मानुभूति प्रकट हो जाने के बाद भी अपने ये काम तो हो गया ना, आत्मानुभूति हो गई, अब आत्मानुभूति के लिए तो पहले की सारी प्रक्रिया चलाई थी। जो उपयोग की अस्थिरता बनी रहती है, रागांश शेष रहता है, उसके विनाश के लिए भी भेद विज्ञान की भावना को बलवती करना अति आवश्यक है। क्या कहते हैं, अपन ने पढ़ लिया कि राजा राणा छत्रपति और हातिम के असवार, और मरना सबको एक दिन, और अपनी अपनी बार सबको मरना पड़ेगा, बिना मरे काम चलेगा नहीं, ये नक्की कर लिया और समझ में भी बात आ गई। अब रोजाना काय को बोले, इस बारे में भावना को रोजाना क्यों बोले, और दिन में 10 दफे क्यों बोले? अरे तुम 10 दफे बोलने से घबरा रहा है, वे तो कहेंगे ये बात 24 घंटे अंदर में तेरे चलनी चाहिए, क्योंकि वो राग इतना मजबूत है अभी अप्रत्यक्ष है ना वरण का भी, कि वो भावना जब तक नहीं चलेगी तब तक वो राग कम नहीं होगा, सम्मत दर्शन हो जाने के बाद भी। तो पहले भी करना और बाद में भी करना, यहां करना जब तक मोक्ष नहीं हो जाए तब तक नहीं छुट्टी मिलेगी। ये आपने देखा होगा कि अपनी माताएं बहने अपनी बेचारी बच्चियों को ये पराया धन है, पराया धन है, ये छोड़ के चली जाएगी, ये हमारे पास थोड़ी रहने वाली है, हैं? ये बात कहती हैं तो लड़कियों को बहुत चुभती है। और आजकल जो लड़कियां भी बातचाल हो गई हैं ना, तो वो कभी कभी विरोध भी करती हैं कि ये बाप मम्मी ये क्या है बार बार कि पराया धन है, पराया धन है, ये बेटा तो अपना धन है, ये मैं पराया धन हूं, क्यों मैं अब द्वारा ये सुनना पसंद नहीं करूंगी? तो मम्मी ऐसा कहने लगती है, हम तो अपनी लड़की को लड़के के समान मानते हैं, लड़के के समान ही पढ़ाते लिखाते हैं, क्यों ऐसा कहने लगती है, हमें तो लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। तो वो लड़की कहती है मम्मी ये क्या रट लगाई, ये बार बार ये कहना इस बात को बताता है कि कुछ फर्क है। तो क्यों कह रहे कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, क्यों चिल्ला रहे? ये बोलो ना दिल्ली हमारी है, जिसमें शक होता है उसके बारे में ज्यादा बोला जाता है। और दिल्ली हमारी है आज तक किसी ने नहीं कहा होगा, जरूरत ही नहीं, वो तो नक्की है ही, लेकिन कश्मीर के बारे में लोग शंका करते हैं तो हमारा है हमारा बोलना पड़ता है, ख्याल में आई ना? तुम बार बार कहते तुम भी बेटे के समान हमारी हो, बेटे के, ये भी नहीं सुनना, ये चर्चा ही उसको पसंद नहीं है। लेकिन मैं उन लड़कियों से कहना चाहता हूं बेटा कि ये कोई अवैज्ञानिक बात नहीं है, ये हमारे बाप दादों से चली आई, हमारे माँ बाप समझते हों चाहे ना समझते हों, यदि उनने ये बात शुरू की है तो उसके पीछे कोई रहस्य अवश्य होना चाहिए। और क्या रहस्य है? कि जो हमारे पेट से पैदा हुई जुड़वा पैदा हुई लड़का हो लड़की, जब एक दिन लड़की छूट के जाएगी तो हमारे छाती पे वो वज्र प्रहार होगा कि हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्यों? इसलिए धीरे धीरे अपने मन को हम तैयार करते हैं, क्या वे तेरे को बुरा कहने के नहीं कहते हैं, वो तेरे मन को भी, क्योंकि हम तेरे को ज्यादा राग करेंगे और ये करेंगे और जिस दिन छोड़ने का मौका आएगा तेरे को भी लेने के देने पड़ जाएंगे। बेटा इस तकलीफ को धीरे धीरे सहने की क्षमता आ जाना चाहिए, इसलिए 12 महीना अंदर में ये चलना चाहिए, तब वो जो आज की लड़कियां होती है ना, मम्मी ताता हम जा रहे कश्मीर, कौन कौन हम और ये जो वो रोना धोना बंद हो गया और ये हंसी खुशी की विदाई आ गई, उसमें से आई है, किसमें से? वो 12 भावना रोजाना भाई थी, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, तुम जिसको बहुत बुरा समझ रही हो वो हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझ करके वो बात पढ़ाई थी। तो ऐसे ही कहते हैं कि जिस शरीर जो स्त्री पुत्र मकान रुपया पैसा धन संपत्ति इतना वैभव, ये जिसको हमने अपना मान रखा है ना, अब मान लो आत्मानुभूति पूर्वक हमने ये भी नक्की कर लिया कि ये सब मेरा नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं क्यों क्या नाम भूल गया, नाम तब तो नहीं भूलता हूं, नाम भूल जाता हूं, क्यों ये क्या? तो ये इतनी जो संपत्ति और वैभव है ये इतना आसानी से नहीं छूटेगा। भरत चक्रवर्ती को छायक सम्मान दर्शन हो गया था, पहले से ही उनने स्वीकृत कर लिया था, पिछले भव से ही 33 सागर सर्वा सिद्धि से आए थे भरत चक्रवर्ती भी, वहां तक ये बात पक्की थी और पहले भव में कि कितने काल तक ये मानने पर भी कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा हमारा नहीं है और ये छूटा नहीं, इतना आसान नहीं है बेटा। मान लेने पर भी नहीं छूटा तो किस बात की कमी रह गई, वो रटाई में कमी रह गई, रोजाना 12 भावना पढ़ने में कचास रह गई। ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, नवोकार मंत्र की माला बंद करके इसकी माला जपो कल से, ये कोई अनर्थ नहीं हो जाएगा। ये कैसे पंडित है नवोकार मंत्र की माला सुनने को कहता है? नहीं, ये उन्हीं भगवान जिन भगवान को तुम याद कर रहे उन्हीं की बताई बात है, ये याद रखने लायक है। समझिए ना, अपने आचार्यों ने रोजाना समाधि पाठ पढ़ो, समाधि मरण पढ़ो। अरे तो मरण नहीं है तो पढ़ लेंगे। अरे तब नहीं होगा काम, रोजाना मौत को याद रखोगे तो ये शरीर छोड़ के जाना है ना, ये सारी संपत्ति छोड़ के यहीं जानी पड़ेगी ना, तो उस दिन बहुत भारी पड़ जाएगी। और रोजाना एक हो गए मेरे है नहीं, है ही नहीं, मैं इनका कर्ता धरता नहीं हूं। जिस दिन तुम्हारे हाथ से कर्तृत्व तो जाएगा, अब तुम्हारी कुछ नहीं चलती है, उस दिन तुमको लेने के देने होंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा। तुम इसे तो मेरे किया ही नहीं, मैंने कुछ, मैं चलता ही नहीं, मेरा चला ही नहीं। अभी से भावना निरंतर भाना, कब तक भाना? बिन विराम के कब तक भाना बेटा? वो छंद पढ़ो, अब ये बिन विराम के तब तक भाना लिखा के नहीं लिखा कि जब तक ज्ञान ज्ञान में स्थिर न हो जाए। अंतिम अंतिम है भैया, अंतिम देख लो क्या दिक्कत है। भेद ज्ञान से तत्व शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो, जितनी आया जब तक माना है ना, जब तक ज्ञान ज्ञान में फिर ना हो जाए, तब ऐसी भेद विज्ञान की भावना तब तक भाना। देखो अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सत्य मन से बिन विराम के तब तक भाना, जब तक पर से हो विरक्त यह ज्ञान ज्ञान में ही फिर ना हो जाए। अधिक क्या कहें जिन्हें भगवान ने कही है ये बात, अब क्या हम इसे ज्यादा और क्या कहें? तब तक भाते ही रहना, भाते ही रहना, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा ही नहीं। सुबह उठ के रोजाना कहना, बेटे से कहना तू मेरा नहीं, पत्नी से कहना तू मेरी नहीं, पत्नी पति से कहना तुम मेरे नहीं। क्यों? इतना मजबूत ये राग है कि समना दर्शन हो जाने के बाद भी नहीं टूटा। अरे पुरानी से नहीं टूटता तो नहीं टूटता तो नई शादी तो नहीं करता, लेकिन भरत चक्रवर्ती क्षण में हटा नहीं। ये कोई आसान नहीं है। सिद्धा बदल जाने के बाद में भी बहुत काम बाकी है, यद्यपि ये रखा सम्मसन होने पर बहुत काम हो गया, लेकिन अभी बात बाकी की चल रही है कि निरंतर रोजाना बैराग भावना पढ़ना, रोजाना 12 भावना पढ़ना, अपने यहां आता कि नहीं आता है, निरंतर चिंतमन करना। प्राचार्य तो यहां तक कहते हैं कि अंदर लब्धि ज्ञान में ये धारा अटूट रूप से बहती रहनी चाहिए। बहुत मार्मिक बात है, सबकी समझ में आएगी, नहीं आए तो भी भैया इसे समझे बिना कोई रास्ता नहीं है सुखी होने का। एकमात्र ये रास्ता है अपने पूज्य गुरुदेव श्री का बताया हुआ, और गुरुदेव श्री की भाषा में बात कहूं तो क्या, देवों की सौधर्मेंद्र की उपस्थिति में, गंधर्व देव की उपस्थिति में, तीन लोक के सभी जीवों की उपस्थिति में, मुनि भगवंतों की उपस्थिति में, दिव्यंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में ये बात वहां कही थी, ये वो बात है, ये कोई हमारी तुम्हारी बात नहीं है, है ना। देखो अपन पढ़ते हैं, आत्मानुभूति प्रकट हो जाने के बाद भी जो उपयोग की अस्थिरता बनी रहती है, रागांश शेष रहता है, उसके विनाश के लिए भेद विज्ञान की भावना को बलवती करना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके बल से ही उपयोग बाहर से हटकर बारंबार आत्मा में जाता है, आत्मा का स्पर्श करता है, आत्मा में गहराई से जमता रमता है, और एक दिन ऐसा आता है कि उपयोग सदा के लिए उपयोग में स्थिर हो जाता है और आत्मा सर्व विकारों से मुक्त हो जाता है। इसी को ज्ञान में ज्ञान का प्रतिष्ठित होना कहते हैं, ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाने का अर्थ है। इससे यह सिद्ध होता है कि जब तक आत्मा मुक्त न हो जाए तब तक भेद विज्ञान की उपयोगिता है। हाँ वो पूछा प्रमाद चोर बैठा है ऐसा लिखा है अमृतचंद ने, वो तुझे लूट ले जाएंगे, है ना। संयम रतन समाल विषय चोर चहू फिरत हैं, लिखा क्या नहीं लिखा। देखो ये किताब आज से कम 15-20 साल पहले छप गई थी पर आप सबने पढ़ी भी और बिना पढ़े भी निषेध भी किया कि जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन एक दफे शांति से गहराई से पढ़ो तो इसमें क्या कौन सा जहर भरा है, वो जहर निकाल देंगे, लेकिन वो तुम्हें ये बताने के लिए तो पढ़नी पड़ेगी ना, और वो रास्ता सबसे बढ़िया है कि मैं नहीं पढ़े कह दू। देखो यह ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित होना तो पूर्णता की दृष्टि से किया गया कथन है, होगी ना। ये तो बात ऊपर की बात हुई, अब यदि आरंभ से बात करें, अब ऊपर की बात है अब नीचे की, तो जब ज्ञान पर से हटकर स्वा में आता है, स्वात्मा को ज्ञान का गेय बनाता है, तो वह भी ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित होना है। दो अर्थ हो गए, एक नीचे ज्ञान में प्रतिष्ठित होना माने चौथे गुण स्थान में, और एक सिद्ध का ज्ञान में प्रतिष्ठित होना, ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित होने का अर्थ चल रहा है। ज्ञान जब जब और जितना जितना स्वामी जमता रमता है तब तब और उतना उतना ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित होता जाता है, और उसी अनुपात में यह भगवान आत्मा पर से मुक्त भी होता जाता है। यह भी एक अपेक्षा है। कौन सी अपेक्षा है भैया? हम जब इकट्ठे पूरे हट जाएंगे तब हम कहलाएंगे, कि नहीं घबराओ कि चौथे में ही कहलाएंगे, ये भी बात नहीं है। तो कब कि तुम जितने जितने में उपयोग में पर से हटकर अपने में जमोगे तो उतने उतने मुक्त होते गए। क्या मतलब? हमने 1 करोड़ का कर्जा लिया, हमने 1 करोड़ का कर्जा लिया, अब 1 करोड़ रुपया चुक जाए तो हम कर्जे से मुक्त कहलाएंगे, यदि 1 रुपया भी बाकी रहा तो हम कर्जे से मुक्त नहीं कहलाएंगे। एक अपेक्षा तो ये है, और दूसरी अपेक्षा ये है कि हमें किस्तें बांधनी थी तो हमने पहली किस्त चुका दी, तो हमने चुकाना शुरू कर दिया, तो इसको भी हम कहते हैं कि हम कर्जे से मुक्त हो गए। अब तीसरी अपेक्षा क्या है कि ज्यों ज्यों किस्तें हम भरते जाएंगे त्यों त्यों कर्जे से मुक्त होते जाएंगे। ये लिखा है कौन सी सूत्र का था भारतर, ज्यों ज्यों आत्मा विज्ञान घन होता जाता है क्यों क्यों बंधनों से मुक्त होता जाता है, और ज्यों ज्यों बंधनों से मुक्त होता जाता है त्यों त्यों विज्ञान घन होता जाता है। और पूज्यपाद स्वामी ने भी बहुत अच्छा संग लिखा, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्व उत्तमम तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्त तत्व उत्तमम। लिखा मत है ना। अब आगे एक अपेक्षा और भी है, दो तो हो गई, अब तीसरी और कौन है? देखो शास्त्रों में अपेक्षा में से वर्णन है, और वो अपेक्षाएं हमको समझनी पड़ेंगी, यदि हम नहीं समझे तो फिर हम कहीं भी भटक सकते हैं। क्यों तो ये लिखा आ जाएगा समझ से क्या आता है? कुछ नहीं होगा, अभी तो 1 कदम भी नहीं चले, है ना, तो समर्थन को बेकार मानने लग जाए, कुछ नहीं होगा। फिर कहेंगे समर्थन हो गया तो सब कुछ हो गया, तो सब कुछ हो गया तो आगे कुछ नहीं करना है, वहां भटक जाएंगे, कहने नहीं कुछ कुछ हो गया और कुछ कुछ बाकी है। तो तीनों अपेक्षाओं से कथन किया जाएगा, समझ में आए ना। एक अपेक्षा और भी है, वह यह है कि जब ज्ञान ने एक बार परमे से अपनापन तोड़कर स्वा में अपनापन स्थापित कर लिया तो फिर उपयोग रूप ज्ञान के पर पदार्थों में चले जाने पर भी लब्ध रूप ज्ञान में आत्मा निरंतर जानने में आता रहने से और श्रद्धा भी उसी में अपनापन रहने से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान बने रहते हैं, यह सम्य दर्शन और सम्य ज्ञान का बना रहना और अनंतानुबंधी के अभाव में परिणति की विद्यमान शुद्धता भी ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित होना ही है और पर से एकत्व की मान्यता से मुक्त होना पर से एकत्व से अज्ञान से मुक्त होना है। मैंने चौथे गुण स्थान में भी जीवन वो बोलते हैं मुक्त दृष्टि मुक्त। अब ये तीसरी अपेक्षा क्या है वो ये कहते हैं अपने एक लड़के ने वो सब शादी हो गई फेरे पड़ गए पक्का हो गया अब उसके अंदर में ये बात है कि ये मेरी पत्नी है ऐसा धारा है। अब वो कहते हैं कि उसे 24 घंटा ये बात याद रखने की जरूरत है कि 24 घंटा व्रत पे रहने की जरूरत है। मैं पत्नी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि आप जल्दी कह देंगे नहीं यदि मैं भगवान का नाम लेता तो आप कह देते कि नहीं नहीं बोले याद रखो 24 घंटे याद रखो क्या दिक्कत है। अरे हमने उन सच्चे देवसाज गुरु को सच्चा देवसाज गुरु मान लिया तो अब 24 घंटा हमें वाणी से बोलने की जरूरत नहीं है। एक अजपा जाप होता है वो अंदर बहता रहता है धारावाहिक रूप से। तो कहते हमारी श्रद्धा ठीक हो गई सब पर पदार्थों में से अपनापन टूट गया अपने आत्मा में अपनापन आ गया तो अपनापन की धारा हमारा उपयोग बाहर हो और हमारे तीर्थंकर हैं हमारा ये मंदिर है हमारी ये पत्नी है ऐसा बोलते समय भी अंदर में वो धारा बहती रहती है लब्धि ज्ञान में तो उसको भी ज्ञान में प्रतिष्ठित होना कहते हैं। क्यों देखो इस बात को हम लोग में बहुत अच्छी तरह समझते हैं क्या शादी हो गई अपनी पत्नी हो गई अब दूसरी महिलाओं से भी हमें व्यापारिक संबंध हो और कोई का संबंध हो अब बहुत प्रेम से बोलते हैं ऐसा करते हैं फोन भी करते हैं बुलाते हैं चाय पानी भी पिलाते हैं पर अपनी घर की पत्नी से भी ज्यादा महत्व देते हैं ना उपयोगात्मक। तो पत्नी बिल्कुल नहीं घबराती है क्योंकि वो जानती है धंधे पानी में करना पड़ता है ध्यान में नहीं ना। लेकिन इनकी श्रद्धा में पत्नी के रूप में अपनापन तो मेरे से ही है वो धारा भी बहती रहती है ना अंदर और जब तक वो धारा बहती रहती है तब तक पत्नी को कोई चिंता नहीं होती है और जिस दिन वो खंडित हुआ और किसी तुम्हारे एक्शन से उसको ऐसा लगा कैसा क्या मामला गड़बड़ है तो उस दिन विद्रोह हो जाता है। मैं ये कहता हूं माताओं बहनों से कि क्या हुआ कि एक दिन रावण ने मंदोदरी से कहा कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा अब मैं मर जाऊंगा। क्या बात करते हो तुम मर जाओगे तो हम विधवा नहीं हो जाएंगे तब मैं क्या करूं अब मैं बच नहीं सकता अब तो मैं मर जाऊंगा कि क्यों तुम क्या हुआ क्या कि वो सीता जो है ना मुझे स्वीकार ही नहीं करती है और मुझे सीता नहीं मिलेगी तो मैं गारंटी से मर जाऊंगा जिंदा नहीं रहूंगा। तो मंदोदरी बहुत घबराई अरे ये तो अपन विधवा हो जाएंगे बोली प्राणनाथ मैं क्या करूं इसके लिए उपाय हो तो बताओ कि तू यदि समझा सकती है सीता को तो जाके समझा। बोलो कितना बढ़िया काम मिला था मंदोदरी को क्यों इन माताओं बहनों से मैं पूछता हूं कि मंदोदरी को रावण का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए था क्यों कर लेना चाहिए था। अरे तुम्हारे सामने कोई तुम्हारा पति ये प्रस्ताव रखे तो तुम स्वीकार कर लोगी क्या तो क्या बात करते हो पंडित जी कह के तो देखे रोटियां वंदना कर दी तो मेरा नाम नहीं जीना हराम कर दूंगी समझते क्या पहचाना पड़ेगा ना। लेकिन वो तो महारानी थी ना पटरानी थी उसने कहा ठीक है समझाऊंगी। अब वो लोग बनना है पटरानी किसी को ऐसा पटरानी पद हमें नहीं चाहिए क्यों और वो गई सीता के पास बहुत समझाया लेकिन सीता को तो मानने का सवाल ही कहां था। वास्तव में मेरा उदाहरण तो खत्म हो गया मैं लंबा नहीं चाहता यानी मेरे कहने का अर्थ ये है कि अंदर में ये ख्याल आते ही यदि दूसरी महिलाओं से खोटे भाव से बात करता है उसे संपर्क करने की जो कोशिश करता है उसे मन में कहीं खोट है तो वो विद्रोह करती है और मन में खोट नहीं है तो वो कोई मना नहीं करती है। ऐसे ही अपने आत्मा में अपनापन आ गया, उस सारे पर पदार्थों में से अपनापन टूट गया, फिर भी उपयोग में वो दूसरे द्रव्य की बात भी करता है, उसके स्वामीपने की बात भी करता है, कर्तापने की बात भी करता है। कोई चिंता की बात नहीं, लब्धि ज्ञान में वो धारा अखंड रूप से बहती रहती है, श्रद्धा में भी बहती रहती है, और तीन एक अनंतानंद जी कसाई के अभाव में भी, जीवन में भी, चारित्र में भी वो बराबर विद्यमान रहती है। तो उसको भी भेद विज्ञान कहते हैं। तीन हो गए, एक तो मोक्ष तक के पहुंचने का, एक चौथे संसार में शुरू हुआ, एक लगातार कंटिन्यूशन में वो धारा बहती रही, उसका नाम भी भेद विज्ञान है। तो अंदर में अजबाजाब जैसा चलता रहता है। अजबाजाब मैंने बताया ना कि आपने देखा बहुत से लोगों हाथ में थैली बांधे रहते हैं और एक माला रहती है और उसे फेरते रहते राम 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 राम। तुम वहां गए थे कि नहीं हमदे जी, मेरे काम हो गया कि नहीं, बीच बीच में बातें भी करते रहते हैं, ख्याल नहीं ना, और फिर राम राम चालू रहता है। फिर वो क्या कहते हैं कि जब वो मैंने बात करी उसके बीच में मेरा वो राम राम चालू ही था ज्ञान में, वो मानता है। लेकिन भैया वो बात करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, ट्रेन से मैं क्या पूछूं क्या कहूं लगाना पड़ता है ना, दिमाग लगाने पर भी अंदर धारा बहती रहती है, श्रद्धा के लेवल पर, अलब्धि ज्ञान के लेवल पर। ऐसे ही उस त्रिकाली ध्रुव में अपनेपन की धारा निरंतर बहती रहने चाहिए, वो धारा अपना काम करती है। तुम करुणानियों की भाषा में बताऊं, जनचंदी कहते ना, सम्मसन हो जाने के बाद प्रति समय क्या असंख्यात गुणी निर्जरा, लिखा कि नहीं लिखा, निर्जरा माने शुद्धि की वृद्धि, कर्मों का खपना। आप बाहर उपयोग लगा रहे, लड़ाई में लगा रहे, खाने पीने में लगा रहे, शादियां करने में लगा रहे, तो भी तुम्हारे परिणामों में असंख्य गुणी शुद्धि की वृद्धि होती जाती है। और ये कथन अकेले दिगंबरों का नहीं है, श्वेतांबर शास्त्रों में भी ये बात है। ये करुणान योग की बात दिगंबर श्वेतांबरों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल एक ही है, सूत्र है। हाँ बोलो ना, सात अखंड विशेष सावक वृद्धानंद विभुजक कहता है ना, असंख्य गुण निजरा, ऐसे 11 स्थान है। 11 स्थान कैसे, कि सम्य दृष्टि से, सम्य दृष्टि की असंख्यात गुणी निजरा होती है, सम्य दृष्टि से श्रावक माने पंचम गुण स्थान वाली की असंख्यात गुणी, पंचम गुण स्थान से अनंतानंद जी का विसंजोग करने वाले की असंख्यात गुणी, फिर छठवें गुण स्थान वाले की असंख्यात गुणी, ऐसे 11 स्थान है। तत्वासूत्र में लिखे तत्वासूत्र दिगंबर से दाम सब मानते हैं, उसमें कहीं कोई है ही नहीं। मतलब देखो, अंदर की वो धारा जो अंदर में जमी रहती है वो शांति से नहीं रहती है कमल जी, वो अपना काम करती रहती है, अपना काम करती रहती है, और उससे ही उसके जीवन में परिवर्तन आता है। ये भरत चक्रवर्ती इकट्ठा कैसे आ गया, कल तक तो 96,000 पत्नियों का राग था, सेकंड की विभूति का राग था, और आज एकदम कपड़े खोल दिए और खोलते केवल ज्ञान हो गया अंतर मुहूर्त में। वो अंदर में वो जो चल रही थी ना धारा, उसने सारे कर्म का स्टॉक खाली कर दिया। क्या बाहर में तो प्रवृत्ति काल में थी, तो एक मैं व्यवहारिक बात भी बता दूंगा आपको। मैं भरत चक्रवर्ती के 96,000 पत्नियां थी, अब उनको अंदर से राग टूट गया विषय भोग का, तो क्या करें, अभी 96,000 में 32,000 छोड़ दें, 64,000 रख लें, ऐसा नहीं हो सकता। छूटेंगी तो सबकी सब एक साथ, और नहीं तो एक भी नहीं छूट सकती, ये नियम है चक्रवर्तियों के। आपके भी, आप या तो ब्रह्मचर्यान व्रत लो, कभी मैं अपनी स्वपत्नी को छोड़कर पर भी संबंध नहीं रखूंगा, और या ब्रह्मचर्य महाव्रत लो, बीच का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं कि इतनी रखी चेतन परिग्रह में, ऐसा नहीं होता, एक झटके से छूटती हैं। अब मैं कहता हूं कि वो बाहर से नहीं होता हो, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन अंदर में तो राग कम हो ही रहा है ना। अब उसकी भोग की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम होती गई, अब आपको क्या पता पड़े, जब तक सामने वाले ने ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया तो आप कैसे निर्णय कर सकते हो कि जिस दिन इसकी शादी हुई थी उस दिन से आज तक मैं कितना कितना मामला कम परिणामों में कम पना आता गया। वो तो तभी मालूम पड़ेगा जब वो छोड़ेगा, और उसके पहले तो मालूम ही नहीं पड़ेगा। अब वो तुम्हारे सामने आके थोड़ी छोड़ेगा, अपने मन में ही छोड़ सकता है, संकल्प कर सकता है, ये कोई जरूरी थोड़ी कि सारी दुनिया के सामने करे। अंतर समझ में आया ना? तो उसकी शुद्धि जो बढ़ती गई वो हमें पता नहीं लगती। अब अंदर से जब खलास हो गया था तो दीक्षा ली और अंदर गया तो जमा, तो अंतर मुहूर्त लगातार जमा रहा तो केवल ज्ञान हो गया अंतर मुहूर्त में। तो वो जो श्रद्धा ने कुछ काम नहीं किया, क्यों? अंदर में जो अजपा जाप चलता रहा, अंदर में ज्ञान में लब्धि ज्ञान में वो रटन चलती रहती है। जब हम ये कहते हैं कि तू मेरा है मैं तेरा हूं, तो उस समय में भी तू मेरा नहीं है और मैं तेरा नहीं हूं, ये रटन अंदर बराबर चालू है। ऐसी विचित्र स्थिति है सम्मय दृष्टि की। देखो तीसरी अपेक्षा हो गई ना, एक अपेक्षा और भी है, वह यह है कि जब ज्ञान में एक बार ज्ञान अपनापन तोड़कर स्वामी अपनापन स्थापित कर लेता है तो फिर उपयोग में ज्ञान के पदार्थों के चले जाने पर भी लब्धि रूप ज्ञान में आत्मा निरंतर जानने में आता रहने से, श्रद्धा में उसी में अपनापन रहने से सम्मय दर्शन और सम्यक ज्ञान बने रहते हैं। यह सम्मय दर्शन और सम्यक ज्ञान का बना रहना और अनंतानुबंधी के अभाव में परिणति की विद्यमान शुद्धता भी ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित होना ही है और पर से एकत्व की मान्यता से मुक्त होना है, पर से एकत्व के अज्ञान से मुक्त होना है। इसी को भी मोक्ष कहते हैं, कहते हैं दृष्टि मुक्त। इन सब बातों को गहराई से समझकर जिनवाणी में जहां जहां जिस अपेक्षा से जो कथन हो वहां वही अपेक्षा लगाकर समझने की से असली बात समझ में आएगी। देखो जैन दर्शन में एकमात्र निज भगवान आत्मा को छोड़कर और जिसे भी उपादेय कहा गया हो, अब शास्त्र में कहीं लिखी हो तो उठा उठा के पन्ना हमारे पास मत लाना, वह सब किसी न किसी प्रयोजन से उपादेय कहे गए हैं, ये समझ लेना। जब तक वह प्रसिद्ध प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तब तक वो उपादेय हैं, और प्रयोजन सिद्ध हो जाए तो वे हे हो जाते हैं। तो भेद विज्ञान कब तक? मोक्ष में जाना उद्देश्य था, मोक्ष में चले गए तो खत्म हो गए ना। इसलिए वो हे लिखा हो तो घबराना नहीं, वो उसके लिए कह रहे, वो बनारसी दास ने हे लिख दिया था ना, तो मैंने आपको बताया था उसके लिए ये बात कही है ना। अभी ये जो उसके बाद में जो है ये पेज लिखा है ये अपन पढ़ चुके हैं पूरा, वो मैंने कोटेशन है ना मेरी उस किताब का, वो अपन पढ़ चुके हैं। अब अगला छंद आता है 131वां छंद, भेद विज्ञान तः सिद्धा सिद्धा एकल केचना अस्य भाव तो बद्धा बद्धा एकल केचना। आज तक जितने भी जीव मोक्ष में गए हैं वो इस भेद विज्ञान से ही गए, और आज तक जितने जीव संसार में रुल रहे हैं वे सब भेद विज्ञान के अभाव से रुल रहे हैं। अब बोले इससे ज्यादा क्या कहें, एकमात्र मोक्ष मार्ग भेद विज्ञान है। पढ़ो चंद, अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे, बोल पढ़ो पढ़ो लो, हमारे विद्यार्थी होते तो मोक्ष
हुए सिद्ध या आगे होंगे, वही तो जानो एक बात तो भेद जानिए, और जीव जो भटक रहे थे अब सागर में भेद जानिए ही भाव से भटक रहे हैं।
अब कितनी महत्वपूर्ण चीज है, और हमने आपको पहले से अंत तक कैसा भेद विज्ञान होता है, कैसे बढ़ता है, कैसे होता है, वो सब बता दिया। ख्याल में ही ना, जो कितनी तो अपनी तरफ से करे उदाहरण दे रहे, पत्नी का बच्चों का, ये शास्त्र की बात है क्या? ये तो मैं आज से नहीं, जब मैं पढ़ता था मुरैना विद्यालय में और गर्मियों की छुट्टी में गांव में जाता था तो मैं वहां प्रवचन करता था, तो मैं शास्त्र में पढ़ करके फिर एक घंटा बोलता था, शास्त्र की तरफ देखता ही नहीं था। तो मेरी माँ कहती थी, भैया अब तुम्हारी बात में बहुत सुन ली, थोड़ा शास्त्र सुना दो। मेरी माँ कहती थी, माँ ये सब शास्त्र की ही बातें हैं। अच्छा ये जो तुम कह रहे हो सब शास्त्र में लिखा है? कि हाँ ये सब शास्त्र में लिखा है, तुमने हमें वहां पढ़ाया है, शास्त्री कराया है, और अब भी तुम्हारे सामने हम शास्त्र पढ़ें? यानी मेरे कहने का मतलब ऐसा लोगों को लगता है, इसलिए मैं पढ़ पढ़ के बताता हूं। क्योंकि तो मैंने ही लिखी है ना, तो मैं बिना पढ़े भी बता सकता हूँ सब, लेकिन इसलिए बताता हूँ कि आपको भरोसा रहे कि शास्त्र की बात चल रही है। देखो हो गया ना, अब तो बनारसी दास कहते हैं, भेद ज्ञान संवर्धन पायो सुचेतन शिव रूप कहायो, भेद ज्ञान जिनके घट नाही ते जड़ जीव बने घट माही। कि जिन्होंने वेद विज्ञान रूप संवर प्राप्त कर लिया है वे समझ लो मोक्ष में चले गए, और जिनने वेद विज्ञान नहीं किया है वे जीव जड़ हैं और जड़ घट बने शरीर में ही बने रहेंगे, अनंत काल तक संसार में घूमेंगे। अभी ये अमृतचंद ने जो वेद विज्ञान की महिमा गाई है वो पूरी हो गई। बनारसी दास जी को मन में संतोष नहीं हुआ, तो वे दो छंद और लिखते हैं। देखो, वेद ज्ञान साधु भयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। के वेद विज्ञान तो साबुन है और समरस समता रूपी रस ये पानी है, और अंतर आत्मा समादृष्टि आत्मा ये धोबी है। कह देव भगवान अपने गुरुदेव कौन है कि तुमने गुरुदेव को धोबी कहा तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा तो तुम मत मानो अंतर आत्मा, इधर लिखा ना कि धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर, अपने गुणों का जो है ना वे मैले हो गए ना उनको धो करके साफ करता है। एक छंद तो ये हो गया, सरल हो गया, एक बहुत बढ़िया है। एक छंद का अर्थ आप घर पर नहीं कर पाओगे, जैसे रजे सोधा रजे सोधी के दरवे काड़े पावक कनक कारी दाहत वो पल कौन, पंख की गर्भ में जो डारी कतक फल नीर करे उज्ज्वल नितारी डाले मल्ल कौन, दधी को मथैया मथी कारे जैसे माखन है कौन, राधे हंस जैसे दूध पीवे त्याग जल खो, तैसे ज्ञान गंत भेद ज्ञान की शक्ति साधी विदे निज संपत्ति उछे दे पर जल को। इसे माला अलंकार बोलते हैं, माने जैसे माला में बहुत से फूल गुछे रहते हैं ना, ऐसे उदाहरणों को माला में गूंज दिया है। एक बात बताने के लिए 10 उदाहरण दे दिए। कौन कौन से सुनो आप, जैसे रजे सोधा रजे सोध के दरबे काले, ये जो जहां पर वो जवेरियों का दुकानें होती है ना सराफा, तो सराफा में नीचे छोटे छोटे कण वे सोने के चांदी के हीरे गिर जाते हैं, तो वहां वे कुछ धूल धोया लोग होते हैं ना, तो शाम को सारी मिट्टी साफ करके धो धोवा के वो निकालते हैं, उसमें इतना माल मिल जाता है कि वे लखपति बन जाते उससे। तो जैसे रज सोधा धूल को धोने वाला रज को सोध के मतलब की चीज निकाल लेता है, ऐसे ये अंतर आत्मा एक कर्म की धूल को धो धो के अपने अंतर आत्मा को निकाल लेता है। पावक कनक काल दाहत और पल को, और अग्नि सोने के मेल को जला देती है, शुद्ध सोना पा लेती है, ऐसे ही ज्ञानी जीव अपने आत्मा में से विकार को जला देते हैं और शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं। पंख के गर्भ में जो डालिए कलग, कीचड़ में फिटकरी डाल दो तो वो पानी अलग कर देती है और मैल अलग कर देती है। ऐसे नीर करे उज्ज्वल नितारी डाले मल को, मल को नितार के पानी को शुद्ध कर देती है, ऐसे ये भेद विज्ञान आत्मा को मैल निकाल के पवित्र कर देता है। और दही को मथैया मथी काढ़े जैसे माखन को, दही को मथ मथ के मक्खन निकाल देता है ना, ऐसे ये भेद विज्ञानी जीव मथ मथ के आत्मा का मक्खन निकाल लेता है। और राजहंस जैसे दूध पीवे त्याग जल खून, वो दूध दूध पी लेता है पानी छोड़ देता है राजहंस, ऐसे ही भेद विज्ञानी जीव आत्मा को ग्रहण कर लेता है पर को छोड़ देता है। तैसे ज्ञानवंत भेद ज्ञान की सकति साध बेदे निज संपत्ति, अपने आत्मा का तो वेदन करता है, उच्छेदे पर दल को और पर दल का उच्छेद कर देता है। ठीक है, अर्थ समझ में आ गया। अब छंद पढ़ूंगा तो आएगा नहीं आदमी, जैसे रजे सोधा सोधी काड़े के दरबे काड़े पावर के कनक के कारी दाहत ओ पल्ले को पंक के गर्भ में जो डारी ए कतक फल नीर करे उज्जवल नितारी डाले मल को दधी को मथैया मथी कारे जैसे माखन खो राजहंस जैसे दूध पीवे त्याग जली खो जैसे ज्ञान बंत भेद ज्ञान की सगति कर भेदे निज संपत्ति उछे दे पर दल को। क्या अंत में एक कलश और रह गया है बाकी रहने न क्या मुकुंद भाई पूरा कर दूंगा लेना दू 5 मिनट वेद ज्ञाना चलन कलनात शुद्ध तत्वोपलंभा राग ग्राम प्रकट करणात कर्णनाम संवरेण बिभ्रतो संपरम मलमालोक ममलान मेकम ज्ञानम ज्ञाने नियत मुदितम शाश्वतो द्योत में तत्। ये संत बहुत कठिन लगता है आपको लेकिन उतना कठिन है नहीं। वेद ज्ञान से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो इसमें क्या कठिनाई है। शुद्ध तत्व की उपलब्धि से राग नाश हो इसमें कोई दिक्कत है। राग नाश से कर्म नाश और कर्म नाश से ज्ञान ज्ञान में स्थिर होकर शाश्वत हो जाते यही है जो अच्छा लगता है। ठंड से बताऊं भेदो ज्ञान छलन कलना शुद्ध तत्वोप लंबा आ गया। भेद विज्ञान से तत्व की उपलब्धि होती है। राग ग्रामा प्रलय करना राग के समूह को नष्ट कर देता है कर्मों को तो कर्मों का संवर हो जाता है। फिर परम आलोक अम्लान एकम आत्मा उसको ग्रहण करता है संतोष को धारण करता है और ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर शाश्वत हो जाता है। बिल्कुल वही सीधा सच्चा अर्थ है। ऐसा भगवान आत्मा इस आत्मा को प्राप्त कर लेता है ख्याल में ना। इस तरह के अधिकार संवर का पूरा हो गया और बनारसी दास के दूसरे में पढ़ लेना अर्थ नीचे लिखा हुआ है।